वहीं आहान ने कहा, हाँ हाँ भैया, भाभी कहाँ है? जब से हम सब घर में आए हैं उन्हें देखा ही नहीं। वो आस्था के बारे में अरमान से पूछताछ करने लगा। जैसे ही आहान ने अपने इमोशंस अरमान के सामने शेयर किए, अरमान इरिटेट हो गया। उसने गुस्से से आहान को घूरना शुरू कर दिया। अरमान के गुस्से से घूरने पर आहान ने अपनी नज़र इधर उधर करना शुरू कर दिया। वो अरमान के गुस्से की तपिश झेल नहीं पा रहा था। तभी ध्रुव ने अरमान की ओर देखते हुए कहा, अरमान भाई, भाभी कहाँ है? अरमान ने कहा, तुम लोग यहीं दरवाजे पर खड़े खड़े बेवकूफों की तरह बातें करोगे? दादाजी को अभी अभी हॉस्पिटल से लेकर आए हो, पहले दादाजी को सोफे पर बैठा दो, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर अरमान लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। दादाजी ने उसके जाने के बाद उन चारों से कहा, देखो, अब जैसे तैसे मैंने अरमान को ब्लैकमेल करके उसे आस्था के साथ रहने पर मजबूर कर दिया है, वरना तुम सब तो जानते हो ना, आस्था अब तक घर के बाहर होती। आस्था को अरमान की सज़ा से बचाने के लिए मैंने ये सब ड्रामा किया है। उसे ये बात पता चली कि उसकी शादी प्रियंका की जगह धोखे से आस्था के साथ हुई है, तो वो कितना ज़्यादा भड़क गया था, और उस वक्त उसका गुस्सा शांत करने के लिए और इस सिचुएशन से निकलने के लिए मुझे हार्ट अटैक का नाटक करना पड़ा। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस ड्रामा के बारे में अरमान को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। जब तक आस्था अरमान के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लेती, तब तक हमें अपना ये नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा। और तुम चारों के चारों बदमाश मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अरमान को इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मैं बिल्कुल ठीक था। तुम सब सुन रहे हो ना मेरी बात? ये सुनकर ध्रुव ने कहा, अरे दादाजी, एक पल को तो आपकी हालत देखकर मैं भी धोखा खा गया था कि कहीं आपको वाकई हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। लेकिन आप तो बड़े उम्दा कलाकार निकले, आपकी एक्टिंग देखकर मज़ा आ गया। और ये आहान भी आपको नहीं पकड़ पाया, जो खुद को बहुत बड़ा एक्टर समझता है, तो भला अरमान भाई कहाँ से पकड़ते? लेकिन फिर भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सब में से सबसे ज़्यादा शार्प नज़र अरमान भाई की ही है, इसीलिए आपको अभी भी उनसे बचकर रहना है। आपको अभी कंटिन्यूस अपनी दवाई भी खानी होगी, और डोंट वरी, आपकी सारी दवाइयों को मैंने सारी कैल्शियम की दवाइयों से रिप्लेस कर दी है, तो आप अरमान भाई के सामने भी दवाइयाँ खा सकते हो, वो केवल कैल्शियम की टैबलेट्स ही होंगी, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। इतना कहकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। तब आकाश ने कहा, यार, अरमान भाई को गए हुए काफ़ी समय हो गया है, अरमान भाई अभी तक आस्था भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? तब दादाजी ने कहा, हमें तो रह रहकर आस्था बेटी की चिंता सता रही है। तुम जानते हो ना, हमने उसे अकेले अरमान के साथ छोड़ने का रिस्क तो ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें डर भी लग रहा है कि कहीं उसने आस्था बेटी को डरा धमकाना दिया हो। ध्रुव ने कहा, नहीं दादाजी, मैंने आपके कहने के मुताबिक अरमान भाई के मन में ये बात डाल दी थी कि आस्था भाभी में ही दादाजी की खुशी है, तो वो आस्था भाभी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना दे। और दादाजी के सामने एटलीस्ट तू अभी के लिए एक्टिंग तो कर ही सकता है ना, और आप तो जानते हैं, धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो प्यार भी हो जाएगा। एक बार प्यार हो जाए फिर तो अरमान भाई आस्था भाभी को कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ध्रुव को अपने कहे हुए शब्दों पर फर्क महसूस हो रहा था। वही बातें उसने इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए अस्पताल में अरमान से कही थी। तब सुमित ने कहा, यार, एक बार को तो तेरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं अरमान तेरा गला न दबा दे, लेकिन फिलहाल लकीली टू बच गया, सिर्फ और सिर्फ दादाजी की वजह से। इतना कहकर वो चारों ही अपने अपने किए गए कारनामों की एक दूसरे के सामने बखान करके हल्का हल्का मुस्कुराने लगे, जैसे कितना बड़ा महान काम किया हो। वहीं दूसरी ओर अरमान जैसे ही आस्था को लेने के लिए अपने कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था बेड के सिरे से लगी हुई सो रही थी। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अरमान आस्था को इस तरह से बेफिक्र सोता हुआ देखकर हैरान हो गया, और तब उसे याद आया कि कुछ देर पहले वो यही बोल रही थी, हमें बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। तब अरमान सोचने लगा कि इस लड़की को मैंने इतना ज़्यादा परेशान किया, मैंने इसे इतनी ज़्यादा बातें सुनाई, लेकिन फिर भी ये इतनी आसानी से कैसे सो सकती है? नहीं नहीं नहीं, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, तुम्हें इस तरह मज़े से सोने का अब कोई हक नहीं है। अब तुम मेरी कैद में हो, तो जैसे मैं चाहूँगा तुम्हें वैसे ही रहना होगा। अभी तो तुम्हें मेरे दादाजी बुला रहे हैं, तो इसीलिए तुम्हें अब उठाना ही होगा। इतना कहकर अरमान ने साइड टेबल पर रखा हुआ जग का पूरा पानी तुरंत सोती हुई आस्था के ऊपर फेंक दिया। वहीं आस्था, जो कि एक सुकून की नींद सोई हुई थी, इस तरह से अपने ऊपर पानी गिरने की वजह से फटाफट उठकर बैठ गई और जोरों से चिल्लाने लगी, नानी, बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई, भागो, बचाओ, बारिश आ गई, नानी माँ कहाँ है आप? जैसे ही आस्था जोरों से चिल्लाई, अरमान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। हालांकि अरमान का कमरा साउंडप्रूफ था, जिसकी वजह से अंदर की कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी, ना ही बाहर की कोई आवाज़ अंदर आ सकती थी। आस्था के मुंह पर हाथ रखे रखे ही अरमान बोला, कितना शोर करती है ये लड़की। फिर आस्था को डांटने लगा, इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो तुम? क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे सोने की? तुम्हें बिना मुझसे पूछे या बिना मुझे बताए कुछ भी काम करने का अधिकार नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूल को तोड़ने की? आस्था कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अरमान का हाथ अपने मुंह पर होने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो केवल अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कन्फ्यूजन लिए अरमान को घूर रही थी। फिर अरमान ने कहा,
तुम्हारे मुंह पर अब क्या ताले लग गए हैं? बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो, मेरी बातों का जवाब दो। आस्था बार बार अपनी पलकें इधर उधर करके अरमान को ये बताना चाह रही थी कि आपका हाथ हमारे मुंह पर रखा हुआ है, तो फिर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं।